戦時でなんかだってアイドンモルやるそうだよ。
परमागम ग्रंथ है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसकी 7 गाथाएं पूरी हो चुकी थी। कल अपने को 8वीं गाथा शुरू करना थी, वो आज अपन उस 8वीं गाथा को शुरू करते हैं। इसके पहले बता दें कि 7वीं गाथा में तो सद्भूत व्यवहार को स्थापित करके निषेध किया था, यानी शिष्य ने पूछा था कि आत्मा अगर शुद्ध ही है, उसमें रागादि नहीं है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, परंतु उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र कृत भेद तो है, भेद जनित तो अशुद्धि होए है कि नहीं उसमें? तो आचार्य ने जवाब दिया कि उसमें भेद है ही नहीं, उसमें ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है। ऐसा कहा, जैसे दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, परंतु दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद नहीं है। भाषा ऐसा कहा, आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में चारित्र नहीं है, और अभिप्राय ये निकाला कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, अनादि से है, अनंत काल रहने वाले हैं, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद नहीं है, आत्मा अभेद है। तो शिष्य कहता है कि अगर ऐसा है कि आत्मा सब प्रकार से शुद्ध ही है, तो बस एक शुद्ध नय को कहने वाला परमार्थ या निश्चय नय का उपयोग होना चाहिए, व्यवहार नय के उपदेश की क्या जरूरत है? ये देखिए, लिखते हैं, यदि ऐसा है, 8वें नंबर की गाथा 34 नंबर का बिंदु, यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार का उपदेश किस लिए दिया, ये शिष्य का प्रश्न है। इसका समाधान आचार्य करते हैं। समाधान में आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार अनार्य यानी मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा बिना वस्तु स्वरूप समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना या समझाना संभव नहीं है। अतः व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होने से स्थापित करने योग्य है, परंतु अनुसरण करने योग्य नहीं। अमृतचंद्राचार्य की टीका में से लिखा है, अमृतचंद्राचार्य ने दोनों ही लिखा कि एक तो परमार्थ प्रतिपादकत्वात् व्यवहार नयो उपसनीया वहां स्थापित करने योग्य है, लेकिन ब्राह्मणों न मलेच्छितव्या इति वचनात् व्यवहार नयो न अनुसर्तव्या। ब्राह्मण को मलेच्छ नहीं बन जाना चाहिए, मलेच्छ भाषा तो ब्राह्मण बोल रहे, लेकिन भाव तो आर्य ही होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? ऐसे व्यवहार की भाषा तो बोली जाए शिष्यों में, लेकिन अभिप्राय तो परमार्थ का चाहिए। तो ये इसके विषय में अमृतचंद्राचार्य ने ऐसा लिखा कि जैसे कोई ब्राह्मण किसी मिलेच्छ को स्वस्ति शब्द का प्रयोग करे, तो वो स्वस्ति शब्द का वाच्य नहीं जानता है, क्योंकि वो संस्कृत में स्वस्ति का अर्थ क्या है उसके ख्याल में जब नहीं आता है, तो वो बोलने वाले की तरह मेढ़े की भांति आंखें नटेर कर खोल कर देखता रहता है कि क्या कहा है इन्होंने, क्या कहा है इन्होंने। जैसे अपने यहाँ कोई नए श्रोता आके बैठा हो,
और अपन कहें तो वो भगवान आत्मा अभेद है, केवल ज्ञान पर्याय से रहित है, पर्याय मात्र उसमें नहीं है। अब इसने कभी सुना नहीं, अभी तो पर्याय नहीं जानता, द्रव्य ही नहीं जानता है, पहली बार सुन रहा है, तो वो आंखें न टेढ़ के देखेगा। मैंने खुद ये अनुभव किया है, सन 1963 में गुरुदेव भोपाल में झरनों के मंदिर पर वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसमें आए थे सैनिक। मैं उस समय मैट्रिक पास करके वहां गया था, केवल उनके दर्शन के निमित्त गया था। तो वहां बैठ गया, वहां जो माने जहां कार्यक्रम हो रहा था, लगभग 5-7 हजार आदमी वहां मौजूद थे, पिन ड्रॉप साइलेंस थी और गुरुदेव के प्रवचन चल रहे थे। और हम ऐसे नवीन श्रोता थे जो हमने उनको कभी देखा ही भर था, पहली बार सुनने का तो प्रश्न ही नहीं आया। लेकिन वे जब बात कर रहे थे शुद्धात्मा की, तो सभा में से ये शब्द भर आते थे, प्रमाण वचन गुरुदेव। तो मेरी भी समझ में एक ही शब्द आया, क्या कि जी प्रमाण वचन गुरुदेव तो शब्द आया, पर प्रमाण किसे किया है ये मेरे समझ में नहीं आया। सही आया कि नहीं? तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां तो जो पहले से अभ्यासी थे उनके लिए सीधी बात बताई जा रही थी शुद्धात्मा की, और हम तो उसका पहले से अभ्यास किया नहीं था, तो हमारे लिए वो बात पकड़ में नहीं आई। तो जो व्यवहारी जन हैं उनको व्यवहार से समझाया जाए तो उनकी समझ में आ जाता है। तो आचार्य उसने अमृतचंद्राचार्य ने उसमें टीका में लिखा है कि जब वो कुछ नहीं समझा तो मेढ़े की भांति देखता रहा, लेकिन जब उसी व्यक्ति ने अथवा किसी अन्य दूसरी भाषा के जानकार ने जब ये बात बताई कि मालूम क्या कह रहे हैं, स्वस्ति भवतु माने, ये कह रहे हैं तेरा अविनाशी कल्याण हो। अरे ऐसा कहा है, मेरे अविनाशी कल्याण की बात की है। तो वो शब्द का भाव भाषण उसको हुआ, और भाव भाषण होते ही साथ आनंद के आंसू आंख से छलक उठे, आंसू बहने लगे। हमने ऐसे भी श्रोता देखे सोनगढ़ में, और जब वो जाते थे मालूम नहीं क्या क्या अभिप्राय लेके जाते थे, लेकिन जब गुरुदेव की बात सुन के उनके अंदर का कहना चाहिए वो मिथ्या तो ढीला पड़ता था, गलित होता था, तो उनके आंसू बहते थे। वे आंसू कोई खेल के नहीं थे, वे आंसू आनंद के थे। दो प्रकार के आंसू होते हैं, ज्यादा खुशी हो तो रोना आता है, और दुख हो गए तो भी रोना आता है। दुख के भी आंसू होते हैं और सुख के भी आंसू होते हैं। तो वो प्रतिपादन जब समझ में आया तो मानो आंसू के बहाने से वो अज्ञान गल गया और बाहर बह गया, और अंदर आत्मा में निर्मलता होने लगी। ऐसी स्थिति बनती है, इसलिए व्यवहार की स्थापना की जाती है। यहाँ इन्होंने ये लिखा कि वो जो व्यवहार की स्थापना करने के लिए अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं कि वो गुरु कैसा होना चाहिए जो शिष्यों को समझाए, वो कौन से रथ में बैठा होना चाहिए, ये शब्द का सम्यक ज्ञान रूपी रथ। लेकिन वो रथ कैसा हो, वो उन्होंने यहां ऐसा लिखा कि वो रथ ऐसा होना चाहिए, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति, यानी वक्ता तो सारथी है, रथ को चलाना है, और रथ काय का है, कौन सा रथ है, व्यवहार परमार्थ मार्ग पर चलना है और सम्यक ज्ञान का रथ चलना है। कौन सा मार्ग कौन सा है? व्यवहार मार्ग में भी सम्यक ज्ञान का रथ चलेगा और परमार्थ मार्ग में भी सम्यक ज्ञान का रथ चलेगा, और वे जो आचार्य हैं वे तो उस रथ के सारथी हैं। कहां कौन सी दिशा में रथ को चलाना है, ये किस दिशा में ले जाना, किस प्रकार मंजिल की तरफ ले जाना, ये उन्हें ज्ञान होता है, क्योंकि वे व्यवहार को भी जानते हैं, परमार्थ को भी जानते। अरे जानते ही नहीं है, उनके परमार्थ भी प्रकट हुआ है और व्यवहार की मर्यादाएं भी प्रकट हुई हैं। ऐसे वे हमारे आचार्य होते हैं, इसलिए ऐसा परमार्थ रथ को का सारथी कोई अन्य आचार्य अथवा वही आत्मा। आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, क्या लिखा, स्वयं व्यवहार मार्ग में रहता हुआ औरों को व्यवहार का उपदेश भी देने के काल में तुम्हारे में भी व्यवहार हो तो दे पाओगे। क्या कह रहे, जैसे आपको ये आया भाई विकल्प दशा में आओ तो सच्चे देवसाथ गुरु की भक्ति करो, मगर तुम्हारी हिम्मत तब तक नहीं होगी कि तुम करते हो कि नहीं, क्या ख्याल में? अगर तुम ही नहीं करते हो तो तुम ये कभी हिम्मत ही नहीं कर सकते कि विकल्प दशा में तुम्हें देवसाध गुरु की भक्ति करना चाहिए। इसलिए यहां लिखा है उसी व्यवहार मार्ग में रहते हुए सविकल्प दशा में। आत्मा शब्द का अर्थ बतलाता है कि दर्शन ज्ञान चरित्र को जो सदा प्राप्त हो वो आत्मा है, और दर्शन का मतलब जो देखता है वो दर्शन है, जो जानता है वो ज्ञान है, और जो आचरण करता है वो क्या है, चारित्र है। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जिसका परिणमन होता है ऐसा अभेद एक आत्मा है, जिसमें धर्म तो अनंत है। कितने हैं? धर्म अनंत हैं, लेकिन आत्मा तो एक। और वे अनंत धर्मों का वास्तव में समझने के लिए एक एक का भी चिंतन संभव है ज्ञान दृष्टि में, लेकिन द्रव्य दृष्टि के लिए अनंत नहीं दिखना चाहिए, अभेद एक ही वस्तु दिखना चाहिए, और अभेद में भेदों को गौण कर देना चाहिए। सर्वथा वस्तु अभेद ही हो ऐसा भी नहीं है, और सर्वथा वस्तु भेद हो ऐसा भी नहीं है। कथनचित अभेद है और कथनचित भेद है। मैं तो ये कहूं कि आत्मा अगर हम उसको उसकी एक द्रव्य की स्वरूप सत्ता की अपेक्षा देखें तो आत्मा को अभेद कहना ये तो उसका कहना चाहिए महासत्ता है, और जब हम उनकी अलग अलग सत्ताओं को देखें, एक एक गुण की सत्ता को देखें, एक एक पर्याय की सत्ता को देखें, तो ये अवांतर सत्ताएं हैं उस द्रव्य के अंतर्गत, ख्याल में है कि नहीं? तो अवांतर सत्ताएं झूठी नहीं, केवल इतनी बात है उनको भेद रूप तुम अगर कह रहे हो तो वो व्यवहार है, वे भेद रूप नहीं है। अरे जिस प्रदेश में ज्ञान है उसी प्रदेश में दर्शन है, उसी प्रदेश में चारित्र है, उसी प्रदेश में अनंत गुण है, और उन्हीं प्रदेशों में पर्याय है। क्या कह रहे? परंतु उन्हीं प्रदेशों में सब होते हुए भी दृष्टि का ये कमाल है कि सब होते हुए सबको नहीं देखती, अपना जो कहना चाहिए ध्येय है बस वही दिखाई देता। कैसे? उदाहरण से बता देते। पांच पांडवों की गुरु द्रोणाचार्य ने माने परीक्षा की धनुर्विद्या की, और एक पक्षी को बिठा दिया, पक्षी बना करके, और उसमें एक तारा लगा दिया, बोले निशाना साधो, आज तुम्हारी परीक्षा में कौन पास होता है कौन फेल होता है। पांचों पांडवों को बुला लिया और वो देखने परीक्षा भीड़ लग गई बहुत बड़ी। अब एक एक को बुलाया, पहले धर्म राज युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर से पूछा साध लो निशाना, प्रसाद लिया, बोलो क्या क्या दिखता है। गुरुदेव आप दिखते हो, भीड़ दिख रही है, वृक्ष दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, पक्षी का आंख का तारा भी दिख रहा है, तुम फेल, बैठो। चार जनों को फेल कर दिया, एक आखिरी नंबर आया अर्जुन का, अर्जुन से पूछा साधो निशाना, साध लिया, बोले क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? नेत्र नहीं है क्या तुम्हारे? हमारे नेत्र हैं, पर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या दिख रहा है? बस एक तारे के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि दृष्टि अपने लक्ष्य के सिवाय किसी को नहीं देखती, और अन्य किसी को देखे तो अलक्ष्य होता है, और अलक्ष्य के बल से द्रव्य दृष्टि की सिद्धि नहीं होती। इसलिए उनका तो लक्ष्य तारा था आंख का, तो मुझे तो आंख का तारे के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा, बस एक तारा दिख रहा है। कह ठीक, निशाना लगाओ। निशाना लगाया तो आंख के उस तारे पर लगा, और बोले तुम पास हो, ये चार फेल। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब अर्जुन ने ये जवाब दिया कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा कि वहां कुछ नहीं है? वहां तो सब कुछ है, लेकिन दृष्टि का कमाल है कि सब कुछ के रहते हुए भी दृष्टि अपने विषय के सिवाय अन्य सबको अलक्ष्य जानकर उन पर दृष्टि डालती नहीं, गौर कर देती। सही है कि नहीं? ऐसे यहाँ द्रव्य में तो असंख्यात प्रदेशों में द्रव्य है, उसी में गुण है, उसी में पर्याय, कोई दो प्रकार के असंख्यात प्रदेश नहीं है, जहाँ पर्याय अलग रहती हो, गुण अलग रहते हो, द्रव्य अलग रहता हो, ऐसा नहीं। उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में द्रव्य स्वभाव विद्यमान है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में गुण स्वभाव, अनंत गुण स्वभाव विद्यमान है, उसी असंख्यात प्रदेश में पर्याय स्वभाव विद्यमान है, लेकिन दृष्टि का एक कमाल है कि तो विद्यमान रहो मगर अलक्ष्य में चली जाओगी, मेरा ये लक्ष्य है नहीं, पर्याय मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य तो नित्य है, इसलिए मेरे दृष्टि का वो विषय नहीं है। मेरा विषय तो अंदर में जो त्रिकाल है वो है, सुबह गुण त्रिकाल है, गुण त्रिकाली है। तो कहे गुण तो है हमारा लक्ष्य के ना, ये भी हमारे लक्ष्य नहीं, क्योंकि मेरे लक्ष्य में त्रिकाल के साथ में अभेद चाहिए। और ये कैसे है तो त्रिकाली परिभेद रूप अनेक है ना, इसलिए तो अभेद को वो लक्ष्य बनाता है और तब उसकी प्राप्ति करता है। तो मगर वो अभेद को लक्ष्य बनाने के लिए भेदों से गुजरता है, भेदों से आगे बढ़ता है। रसगुण चिट्ठी में भी पंडित जी ने लिखा है कि जो आत्मानुभूति निर्विकल्प अनुभूति होती है वो सविकल्प दशा से निर्विकल्प दशा में जाता है। ऐसे तो जो सविकल्प दशा है वो क्या है, वो व्यवहार की स्थापना है, और वहां उन विकल्पों को छोड़ा और उनका वो गौर किया, गौर करके अपने आत्मा को मुख्य करके उसमें निर्विकल्प हुआ, वो प्रयोजन की सिद्धि। इसलिए ये शब्द डाला कि ये जो व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी रथ महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति आचार्य उस आत्मा को कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो दर्शन ज्ञान चारित्र को सदा प्राप्त होता रहता है, होता है वह आत्मा है। तब उसको तत्काल होने वाले अत्यंत आनंद के जिसके हृदय में सुंदर ज्ञान की तरंगे उछलने लगती हैं, ऐसा वह व्यवहारी जन आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेता है। इस प्रकार जगत तो मलेच्छ के स्थान पर है और व्यवहार नय की भाषा मलेच्छ भाषा के स्थान पर है और भाव तो परमार्थ के स्थान पर है। समझ में आएगा नहीं, जो श्रद्धान कराना है वो भाव तो परमार्थ के स्थान पर है, इस व्यवहार के द्वारा परमार्थ का ही ज्ञान कराते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ, जरा जवाब देना। हमारे हाथ में एक रुपए का नोट है, कितने का, एक रुपए का नोट, और मैंने आपसे पूछा ये क्या है, और उनमें दो प्रकार के चतुर लोग थे, एक बोला जी एक रुपया है और दूसरा बोला जी सौ पैसा है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है बोलो तो। मगर दोनों एक सा नहीं बोल रहे, दोनों के दृष्टि में फेर है। एक की दृष्टि ये है कि वो भेदों को देखता है, भले वस्तु वही है लेकिन भेदों को देख के बोलता है। दूसरे की दृष्टि ये है कि वो भेदों में अभेद को देख के बोलता है। जो अभेद को देख के बोल रहा है वो दृष्टि का विषय है, जो भेद करके समझा रहा है वो व्यवहार का विषय है। समझ में आया कि नहीं, ऐसा होता है। हमने तो ऐसा तक देखा, परीक्षा की गई, आधा गिलास पानी भरकर पूछा गया सभा में, बोलो गिलास कैसा है, तो आधे से लोग बोले कि आधा खाली है और आधे से लोग बोले कि आधा भरा है। समझ में आया, लेकिन अपन ने निष्कर्ष निकाल लिया, जो बोल रहे हैं आधा भरा है वे हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, आयसन में, और जो बोल रहे हैं आधा खाली है वे हैं निराशावादी, पेसिमिस्टिक। समझ में आया, ये पता लगता है। इसलिए भेद में जो उलझ गया है वो तो व्यवहार में उलझा हुआ है, उसे परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, और जो भेद की स्थापना ही नहीं करना चाहता है उसे भी परमार्थ की प्राप्ति होने वाली नहीं। क्या कह रहे, दृढ़ता पूर्वक व्यवहार स्थापन करने योग्य है, ऐसा लिखा है इसी में, दृढ़ता पूर्वक व्यवहार स्थापन करने योग्य है। परंतु तो पूरा वाक्य सुन लेना, अधूरा नहीं, परंतु व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य। तो स्थापन करने योग्य क्यों है, क्योंकि व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है, उनमें प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। ख्याल में आए कि नहीं, तो प्रतिपादक होता है व्यवहार और निषेधक होता है, उसको निषेध करने वाला होता है कौन, निश्चय, में वो निषेध। तो दो संबंध हो गए, निषेध निषेधक संबंध भी हो गया और प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध भी हो गया। तो प्रतिपाद्य हो गया निश्चय, प्रतिपादक हो गया व्यवहार, तो ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध हो गया। ऐसा लगता है कि प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध में मित्रता है और निषेध निषेधक में ऐसा लगता है कि शत्रुता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें शत्रुता और मित्रता दोनों ही नहीं है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। दो व्यक्ति मिलकर के शतरंज खेल रहे हों तो वे दोनों मित्र हैं कि शत्रु हैं? शत्रु के संग खेलेगा कोई? हैं दोनों मित्र, तो ये व्यवहार नैवी श्रुत ज्ञान का अंश है सम्यक ज्ञान का, और निश्चय जो है वो भी श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान का अंश है, और दोनों अपना अपना रोल कर रहे हैं। उसका यही रोल है कि भेद को बताना, और इसका यही रोल है कि भेद का निषेध करके अपने अभेद को स्थापित करना। तो बताओ जरा, रामायण चल रही हो तो तुम क्या ये चाहते हो कि जो भाषा राम बोले वही रावण बोले? क्या चाहते हो कि रावण की भाषा अलग ही हो तो शोभा होगी, तो रामायण सही सिद्ध होगी? समझ में आया ना? और भी मैं एक बात कहता हूं, शादी हो रही हो, शादी एक घर में होती कि दो घर में? बताओ, जवाब दो जरा। दो घर में शादी होती। दो शादी होती हैं कि एक है? एक। और घर कितने? दो। तो गीत एक प्रकार के गाए जाएंगे कि दो प्रकार के? ऐसा सुनो जरा, ध्यान से सुनो जरा। तो लड़की वाले के यहाँ लड़की की प्रशंसा के गीत गाए जाएंगे, लड़के वाले के यहाँ लड़के की प्रशंसा के गीत गाए जाएंगे, लेकिन लड़के वाले ऐसे मूर्ख हों कि नहीं हमारे लड़के का प्रसंग है, लड़की वालों से भी कहे लड़के के गीत गाना पड़ेंगे, तो वे कहेंगे पागल से संबंध मत करो। जो प्रसंग को नहीं समझता कि जिसका प्रसंग हो उसके गीत गाए जाते हैं, उसके लड़की का प्रसंग है तो लड़की के गीत गाए जाएंगे, या लड़के का प्रसंग है तो लड़के के गीत गाए जाएंगे, लेकिन दो गीत भले गाए जाएंगे दो कार्य सिद्ध नहीं होंगे, एक ही कार्य सिद्ध होने वाला है। शहनाएगी नहीं? ऐसे कदाचित सविकल्प दशा में पर्याय या व्यवहार की स्थापना की जाए है, और फिर निषेध भी किया जाए, तो जानना कि वो निषेध जो किया गया है प्रयोजन की सिद्धि के लिए, और वो जो तुम्हारे से दोनों की स्थापना की गई है वो वस्तु स्वरूप का मंथन करने के लिए। मंथन होता है दोनों नयों से आयोजन में, और तत्व की उपलब्धि होने पर सच पूछो तो दोनों नयों की आवश्यकता नहीं होती। मथानी से वो मथती है ना, जो तुम्हारे मक्खन को अमन निकालने के लिए दही को मथती है ना मथानी से, तो उसमें एक छोर होते हैं कि दो होते हैं? दो ही खींचे जाते हैं कि एक ढीला किया जाता है, एक खींचा जाता है? एक ढीला कर किया जाता है, एक खींचा जाता है। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में यही लिखा ना अंत में, एक एन आकर्षयंती शिलथयंती वस्तु तत्व मित्रेण अंतेन जयति जैनी नीति गोपिका मंथान में। क्या कह रहे? गोपिका की तरह वो दोनों को एक एक क्रम क्रम से, एक को जब खींचती तो एक को ढीला करती, और ये ढीला करती खींचती है इस तरीके से वो मक्खन ऊपर आ जाता है, और मक्खन ऊपर आ जाता है तो दोनों को छोड़ देती है और मक्खन को निकाल लेती है। ख्याल में आएगा? ये शैली है, इसलिए व्यवहार नए स्थापन करने योग्य है, परंतु अनुसरण करने योग्य है, अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो स्थापना का कारण क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। और निषेध करने का कारण क्या है? कि जो व्यवहार का जो कथन है वो परमार्थ नहीं है, परमार्थ उससे विपरीत है, इसलिए इसके कथन से, इसके कथन को नास्तिपरक जानकर, वस्तु स्वरूप को अस्थिपरक जानकर नास्ति को गौण कर देना और अस्थि को प्रमुख करना, तो आपको प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। तो शिष्य देखो पूछता है, अगला बिंदु जरा, यहाँ नौवीं दसवीं गाथा प्रारंभ होती है। अभी मुझे मालूम है कि अभी दो प्रवचन हैं, लेकिन हमने विचार ये किया है कि आज और कल में तो 9-10 गाथा पूरी कर देंगे। समझ में आया? पर जो 6 गाथाएं और हमने वहां लिखी हैं, उनको एक प्रवचन में 6 ही गाथाएं पूरी कर देंगे। 16 लिखी ना हमने, ऐसे इसका सार लिखा ना 16 गाथाओं का, वो 16 गाथाओं को आखिरी दिन रिपीट कर देंगे, और 16 को 5 मिनट में 16 गाथाएं आपके ज्ञान में कराएंगे। क्या ख्याल में? ताकि आप भूलो नहीं, 5 मिनट में, इसे ज्यादा नहीं लगेगा, और 16 गाथाएं हो जाएंगी, और कहीं अंश छूटेगा नहीं गाथा का। क्या ख्याल में? ये इस ढंग से अपन को पक्का करना ना विषय को। जब सर्वांगीण ज्ञान होता है तो उसमें प्रयोजन भूत क्या है, अप्रयोजन भूत क्या है, ये निकाल लिया जाता है। जिसको सर्वांगीण ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को साधने में समर्थ। चलिए देखिए, नौवीं दसवीं गाथा पढ़ता हूं। जो अब इसमें ये आ रहा है कि व्यवहार नए प्रति का प्रतिपादकत्व कैसे है ये सिद्ध करते हैं। जो ही सुदेही गच्छदि, जो ही सुदेण ही गच्छदि, अपान मृणम तु केवलम शोदम तम शुद्ध केवली मिशिनो भणंति लोय पदी वैरा। जो सुदनानं सब्बं जान दिशुद केवली तमा हुजना नानं अप्पा सब्बं जम्मा सुद केवली तमा। अनुवाद पढ़िए। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शोध केवल जानते ऋषि गण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उसको कहें श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहें सब ज्ञान सो आत्मा ही है श्रुत केवली उससे बने। मूल गाथा में ये बात आई। प्रश्न तो ये आया था कि आप हमें ये बताइए कि वो व्यवहार प्रतिपादक कैसे और उसका फिर निषेध क्यों किया जाता है, ये प्रश्न हम बाद में उठाएंगे। तो पहले ये नौवीं दसवीं गाथा में श्रुत केवली के आधार से निश्चय श्रुत केवली किसको कहते हैं नौवीं गाथा में कहा है, और व्यवहार श्रुत केवली किसको कहते हैं दसवीं गाथा में कहा है, और फिर ये कहा है कि भले वो अलग अलग कहा है लेकिन वो अलग अलग है नहीं। अभिप्राय से तो श्रुत केवली का स्वरूप दो प्रकार का नहीं है, श्रुत केवली का स्वरूप तो एक ही प्रकार का। तो देखो लिखा है जो ही सुदेण जो अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा अहिगच्छति अभिगच्छति माने जो अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा जानता है, किसको जानता है अपानम, किसको जानता है आत्मा को जानता है, और कौन आत्मा इनम, इनम माने अयम, इस आत्मा को जानता है। इसका मतलब अपने आत्मा की बात चल रही है, निकटवर्ती आत्मा को अयम बोला जाता है। तो इस आत्मा को जो श्रुत ज्ञान से जानता है तू केवलम शुद्धम, कैसा जानता है कि ए मैं तो केवल शुद्ध हूँ, ऐसा अपने श्रुत ज्ञान की अंतर सन्मुख पर्याय करके भेद न रहने देवे और ये अनुभूति अपनी पर्याय में प्रकट हो जाए भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा कि मैं तो शुद्ध मात्र हूँ, मैं तो केवल माने अकेले ही हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञायक हूँ, चिन्मय हूँ, ऐसी जो अनुभूति उसकी हुई है वो अनुभूति हुई है भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा, और भाव श्रुत ज्ञान सीधा गया है स्वभाव सन्मुख हुआ है। अपन यूं भोले भाषा तो कोई दोष नहीं है कि स्वभाव में चला गया, अजन में जाता आता तो कभी नहीं है, लेकिन बोला यही जाता है कि वो श्रुत ज्ञान की पर्याय स्वभाव में चली गई,
विषय कर दिया,
हाँ विषय किया ना, बस विषय किया इस अपेक्षा उसमें चली गई ऐसा बोला जाता है। तो वो जो डायरेक्ट श्रुत ज्ञान के द्वारा विकल्पों को टाल करके भेदों को टाल करके व्यवहार की सब कथनों को गौर करके परमार्थ स्वरूप जो अपना आत्मा है उस आत्मा में निर्विकल्प जब अनुभव करता है तो ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होती तो श्रुत ज्ञान में है लेकिन अनुभूति केवल की होती है, केवल माने शुद्धात्मा की होती है, इसलिए उसको श्रुत केवली कहते हैं। क्या कहा? अनुभूति किसकी हुई? केवल की। केवल माने कौन? केवल माने मेरा अकेला एक द्रव्य स्वभाव, अभेद द्रव्य स्वभाव, वो केवल है, और वो अनुभूति हुई किसमें? श्रुत ज्ञान में, भाव श्रुत ज्ञान में, इसलिए उसको कहते हैं भाव श्रुत केवली। क्या कहते हैं? भाव श्रुत केवली, सम्यक दृष्टि से, है ना। अभी हम थोड़ा और बताएंगे इसमें सम्यक दृष्टि के विषय में भी थोड़ा और बताएंगे। देखो अभी तो इतना ही ले रहे हैं कि उसको कहा उन्होंने श्रुत केवली। सो शुद्ध केवली मिशिनो, वो श्रुत केवली है ऐसा ऋषिगण जो आत्मा के जानकार पूर्ण ऋषिगण हैं भणंती वे कहते। और कौन से ऋषि? लोय पदी वैरा, जो लोक को प्रकाशित करने में दीपक की भांति जिनका ज्ञान वर्तता है, ऐसे ऋषि उनके लिए श्रुत केवली कहते हैं, जो अपने उपयोग से भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा अपने मात्र आत्मा को तन्मय होकर जानते हैं, एकाग्र होकर जानते हैं, उनको निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। ठीक है, तो व्यवहार कौन है, तो के आगे जो शुद्ध नानम सब्बम, जो समस्त श्रुत ज्ञान को जानदी माने जानता है, समस्त श्रुत ज्ञान को जानता। अब समस्त श्रुत ज्ञान क्या है, कितना है समस्त श्रुत ज्ञान का विस्तार, द्वादशांग रूप है, जान में वो द्वादशांग रूप में उसका विस्तार है, वो सारा विस्तार द्वादशांग का जो विस्तार है उसे जो जानता है वो तो होता है द्रव्य श्रुत केवली। क्या ख्याल में, गणधर जो होते हैं वे द्रव्य श्रुत केवली भी होते हैं और भाव श्रुत केवली होते हैं, पर ध्यान रखना अकेले सम्यक दृष्टि हो उनको श्रुत केवली का व्यवहार नहीं होता। क्या कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि द्रव्य के साथ भाव होता है तो द्रव्य भाव साथ में दोनों की सिद्धि होती है, अकेले की सिद्धि, और यही कारण है कि अभी श्रुत केवली कोई नहीं है, क्या वो तो ज्ञान विच्छेद हो गया, वो जो जो अंतिम पांच श्रुत केवली हुए उसके बाद कोई श्रुत केवली नहीं हुआ, उसके अंग के ज्ञान के अंश ज्ञान के धारी तो हुए हैं लेकिन श्रुत केवली द्वादशांग के ज्ञाता, तो द्वादशांग को जिसने जाना वो व्यवहार श्रुत केवली है, लेकिन मैं ये पूछता हूं द्वादशांग में क्या जाना है, द्वादशांग में आत्मा जाना, तो इतने विस्तार में क्यों गए कि जिनको संक्षेप में समझ में नहीं आता उनको विस्तार में समझाया जाता है, सही बात है कि नहीं, लेकिन विस्तार में विस्तार नहीं समझाया जाता है, वो ही संक्षेप समझाया जाता है। सच बात तो ये है, हमने ऐसा एक मनोहर प्रसाद जी वर्णी है ना, जो सहजानंद वर्णी, उनका एक दृष्टांत पढ़ा, बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया कि एक तुम्हारे से शिष्य उनके पास आके रहने लगा कि हमें तो ब्रह्म समझाओ, आयोजन में वो ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है ये समझाओ, तो ये समझ गए कि इसको सीधा तो अभी आत्मा समझ में आएगा नहीं, ये थोड़ा हमारे यहाँ रहे कुछ सीखे कुछ काम करे तो इसको धीरे धीरे संस्कार आएगा और इसको आत्मा समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अगर तुम्हें ब्रह्म को समझना है तो हम जो कहें वो तुम्हें करना पड़ेगा है, तो गए हमारे यहाँ अभी वास्तव में ब्रह्म तो अजैन मत का शब्द है, समझ में आएगा नहीं, और अजैन में जो ऋषिगण होते हैं वे जंगलों में रहते हैं और पूरे परिवार के साथ रहते हैं और गाय बैल भैंस सब होते हैं, तो बोले तुम हमारे ही साथ यहीं रहो और हमारे जो गाय बैल भैंस हैं उनका जो गोबर होता है उससे कंडे तुम पाथने का काम करो, 6 महीना अगर कंडे पाथोगे तो फिर हम तुम्हें ब्रह्म समझाएंगे, तुम्हारी समझ में आ जाएगा, समझ में आया। उसने 6 महीने तक वो कंडे माने बनाए तैयार किए, कंडे जानते क्या, हाँ जो भी छाना बोलते क्या बोलते, अच्छा ठीक है, हाँ वो 6 महीने के बाद में जब वो बोला कि साहब 6 महीने हो गए अब तो बताओ वो ब्रह्म क्या है, तो 6 महीने के बाद कहा कि ब्रह्म कुछ नहीं, ये अपना आत्मा है ना, यही का नाम ब्रह्म। तो कह हमें 6 महीना कंडे क्यों पथवाए ये बताओ, कहे तुम ऐसे थे कि हम शुरू में बता देते तुम्हें विश्वास ही नहीं होने वाला था, 6 महीना जब तक तुमने कंडे पाते तो तुम्हारे में योग्यता तैयार हो गई, तुम्हारे में समर्पण तैयार हो गया, और अब हम जो बता रहे हैं तो तुमने बिल्कुल पकड़ा कि हमारी ये तो हम समझ गए इसका नाम ब्रह्म का, लेकिन उस समय पकड़ाते तो तुम नहीं पकड़ते। ऐसे आचार्य व्यवहार को विस्तार करके समझाते हैं लेकिन विस्तार का प्रयोजन विस्तार में जाने का नहीं है, विस्तार का प्रयोजन जैसे आप तीर्थ यात्रा को जाते हैं ना तो कहते ये भी देख लो ये भी देख लो ये भी देख लो, देखने ही देखने को गए हो कि घर लौटने के लिए गए हो, आप बताओ ना, कितनी बड़ी यात्रा निकालो 1 महीने की, लेकिन वो यात्रा घर लौटने के लिए है आगे जाकर के कहीं भी अटक जाने के लिए, काहे के लिए है, तो व्यवहार कितने प्रपंच हो उसका विस्तार, लेकिन वहां से लौटे तो परमार्थ की प्राप्ति होती है और व्यवहार के विकल्पों में उलझा रहे तो परमार्थ की प्राप्ति नहीं। ये इस तरह से यहां इन्होंने लिखा, मैं बिंदु पढ़ देता हूं, उसका 35 नंबर का बिंदु है, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, वह कहते हैं जो भाव श्रुत ज्ञान रूप स्वसंवेदन ज्ञान से, शेष शब्द छूट गया छपने में, स्वसंवेदन ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, वह परमार्थ से श्रुत केवली है, यानी वो निश्चय श्रुत केवली है या वो भाव श्रुत केवली। और जो द्वादशांग भेद रूप समस्त द्रव्य श्रुत ज्ञान को जानता है, वह व्यवहार श्रुत केवली है। यद्यपि जिस प्रकार पूर्व पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता था, ये जयसेन आचार्य की टीका में से निकाल के रखा भैया, उसमें उन्होंने ये लिखा कि जैसा पूर्व के पुरुषों को शुक्ल ध्यान के द्वारा स्वसंवेदन ज्ञान होता था, अभी उस प्रकार का स्वसंवेदन ज्ञान का अभाव है। क्योंकि शुक्ल ध्यान का अभाव है तो शुक्ल ज्ञान संबंधी स्वसंवेदन ज्ञान का भी अभाव है। उस प्रकार स्वसंवेदन ज्ञान अभी नहीं होता, तथापि निश्चय धर्म ध्यान योग स्वसंवेदन ज्ञान अभी भी होता है। वो समय दृष्टि के होता है, अभी भी होता है, समझाए कि नहीं। अतः द्रव्य श्रुत के समस्त विस्तार और भेद कथन का सार, ये जयसेन आचार्य की टीका में से लिया, समस्त कथन का सार निज शुद्धात्मा को भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वसंवेदन करना है, अतः व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, इसलिए उसकी दृढ़ता पूर्वक स्थापना। आपने शिविर लगाया, ये शिविर चालू रखने के लिए लगाया कि विसर्जन करने के लिए, बोलो ना, है 8 दिन के लिए। देखो बता, दिन ही गिना दिए उन्होंने तो, 6 हो चुके, 2 दिन और रुकना, बल्कि जो समझदार हो वो 8वें दिन चले ही जाना। हाँ नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा यहाँ क्या व्यवस्था है, है? अच्छा याद चले गया, शिविर वाली व्यवस्था अलग हो जाएगी शिविर। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, जरा शब्द मत पकड़ना, मेरा तो अभिप्राय दूसरा था, मुझे ध्यान नहीं था कि आप पकड़ने वाले भी बैठे, पकड़ा जाऊंगा।
देवराली में साल भर ध्यान गंगा नियमित रूप से।
हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। अपना तो शिविर को समापन करना होता, ऐसे व्यवहार का विस्तार जितना करना हो, षट खंडागम आपको जरा बता दें, व्यवहार का विस्तार थोड़ा जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है, और वो जो षट खंडागम होता है उसको उमा स्वामी ने एक सूत्र में बता दिया, शत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहत्वैश्य, एक ज्ञान के साधन में षट खंडागम दिखा दिया एक सूत्र में। लेकिन इसका जब विस्तार चला, इसके चूर्णी सूत्र लिखे गए, इसकी टीका धवला, जय धवला महाधवला टीका लिखी गई, तो इसके 39 वॉल्यूम बने। कितने वॉल्यूम? ये मेरे पास हैं 39 वॉल्यूम, एक भी नहीं कम है, पूरे ही हैं, और उनमें प्रवेश चल रहा है, समझाया ना। लेकिन वो उसमें हमें जहां तहां, जहां भी हम घूमते हैं, वहां जगह जगह कहते हैं कि तुम इन विकल्पों से हटकर तो घूमे कि नहीं घूमे, कह घूमो तुम्हें जगह जगह ये प्रेरणा मिलेगी, ये प्रेरणा पाकर के आप जरा अपने स्वरूप में जाना तो तुम्हारा कार्य होगा। इसलिए यहाँ कहा कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ऐसा निश्चय करना, समझ में आया कि नहीं। तो फिर मालूम 11वीं गाथा में शिष्य ने नया प्रश्न उठाया कि अगर व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है तो हमें तो शंका हो गई, आपने ये भी कह दिया कि स्थापना भी करो और आपने ये भी लिख दिया कि अनुसरण मत कर लो, वो अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो ऐसा व्यवहार जो परमार्थ को बताए वो वास्तव में अनुसरण करने योग्य क्यों नहीं है, क्यों नहीं? तो 11वीं गाथा लिखी, व्यवहारो अभूदत्थो भूदत्थो देश दो शुद्धो भूयत्थ मत्स्य दो खलो सम्मा इट्ठी हवदी जीवो। क्या कहा? कि जो व्यवहार है वो अभूतार्थ, अभूतार्थ व्यवहार के आश्रय से कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति आज तक कभी हुई, व्यवहार से जब तक हटके भूतार्थ में ना आए, क्योंकि व्यवहार नए अविद्यमान अर्थ को बताता है, असत्य अर्थ को बताता है, जो वस्तु में नहीं है उसकी कल्पना करके बताता है, और जो भूतार्थ नए है वो वस्तु में है, विद्यमान है, उसी को ज्यों का त्यों कथन करता है। हम तो यूं कहें कि विद्यमान स्वभाव का जो कथन करे उसको भूतार्थ नहीं कहते हैं और अविद्यमान का जो कथन करे उसको अभूतार्थ नहीं कहते।
जिसका विषय है उसे,
हाँ जिसका विषय है उसे बतावे, जो विषय मौजूद है। जैसे घी का घड़ा बोलते ना अपन, घी का घड़ा देखा आपने? बोलो कौन ने देखा घी का घड़ा? किसी ने नहीं देखा आज तक। ये देखा होगा कि घड़ा तो कोई और का होगा, उसमें घी रखा होगा, ये तो हो सकता है, और वो बोला जाएगा घी का घड़ा, लेकिन यह कथन व्यवहार है क्योंकि वो अविद्यमान अर्थ को बता रहा है। और विद्यमान अर्थ को बताएगा वो कौन? वो विद्यमान अर्थ को बताने वाला भूतार्थ है। आत्मा ज्ञायक है, आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा स्वपर प्रकाशक है। इस तरीके से आत्मा का ज्ञान कराएगा तो वे गुण और वे लक्षण आत्मा में विद्यमान है। क्या कह रहे? विद्यमान लक्षणों के द्वारा जो आत्मा का परिचय कराता है वो वास्तव में भूतार्थ है। और सच पूछो तो भूतार्थ नए वाणी का विषय नहीं है। क्या कह रहे? अब नई बात
है? नहीं है।
हाँ, भूतार्थ नए तो अनुभव का विषय, क्योंकि नए ज्ञानमय होता है, ज्ञानात्मक भी होता है, शब्दात्मक भी होता है, अर्थात्मक भी होता है। समझ आया कि नहीं? तो जो ज्ञानात्मक नए है वो कोई वाणी से ग्राह्य होगा कि ज्ञान से ग्राह्य होगा? और ज्ञान अनुभूति रूप होता है, और अनुभूति निर्विकल्प होती, राग रहित होती है। ऐसी अनुभूति के द्वारा, उस ज्ञान नय के द्वारा वो ज्ञायक जाना जाता है। तो जैसा ज्ञायक है वैसा जाना जाता है। हाँ, इसलिए उसको भूतार्थ कहते। ग्यारहवीं गाथा में है, अभी चूंकि टाइम हो रहा है, हो चुका है, और हमारा अभी बहुत महत्वपूर्ण एक प्रवचन अभी होना है। कितनी देर हो जाए, मुखियों के रस हो तो रस वालों में देर नहीं होती, रस वालों को तो रस आता है। कितनी देर हो तो रस आता है, और अगर रस ना हो तो एक मिनट की देरी भी उसको कसाय भड़का देती है। ऐसा, इसलिए अब यहाँ अपना अपना भाई दूसरा प्रवचन करेंगे, और मैं अभी इसको यहीं विराम लेता हूँ। बची हुई बात को दो प्रवचनों में पूरा करेंगे।